इसमें पारे में हमने सूरह फुरकान से शुरू किया था कि किस तरह से उसमें कुरान का मकसद बताया गया, मक्का वालों के एतराजात थे। फिर इसी तरह हशर के रोज नबी सल्लम की तरफ से जो एक क्लेम जो है वो आएगा कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। फिर हमने कुरान पाक को छोड़ने की किस्में देखी थी कि इसको सुनना ना, इस पर ईमान नहीं रखते, सुनते हैं तो पढ़ते हैं तो अमल नहीं करते। फिर जिंदगी के जब मामले पड़ते हैं तो इसमें इस किताब को गाइड नहीं बनाते, जज नहीं बनाते। फिर इसके मानी पे गौर ना करना, दिल की बीमारियों की इलाज इससे ना लेना, ये सारी कुरान पाक को छोड़ने की किस्में। फिर इसी तरह हमने इस सूरत में गुमराही का सबसे बड़ा सबब नफ्स की इत्तबा पढ़ा कि ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लेते हैं लोग। सूरह फुरकान आयत 43 में पढ़ा था और हदीस में आता है कि तबाह हुआ अब्द दीनार, यानी माल का बंदा तबाह हुआ, दिरहम का बंदा तबाह हुआ। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको दुनिया में भूख की और खाने पीने की फिक्र पड़ गई, बस वो तबाह हो गया। फिर इसी तरह इस सूरत में हमने पढ़ा कि कुरान एक ही बार क्यों नाजिल नहीं हुआ, इसकी हिकमतें होती हैं। वो बताएगी कि थोड़ा थोड़ा इसलिए कि आप इसको जज्ब करें। और फिर सूरत के आखिरी रुकू में हमने इबादुर रहमान को पढ़ा। फिर इबादुर रहमान की सिफात को पढ़ते हुए हमने दुआएं भी मांगी थी अल्लाह ताला से। और उसके बाद तवील सूरत हमने पढ़ी, सूरत शोरा, जिसमें अहले मक्का को बता दिया कि तुम इस नबी को अगर नहीं मान रहे, पिछले अंबिया की कौमों ने जब उनको ना माना तो कैसे अल्लाह ने उनकी मदद की। इसमें हमने हजरत मूसा का किस्सा डिटेल से पढ़ा, हजरत इब्राहिम का पढ़ा और छोटे छोटे तौर पर हमने बाकी कौमों के किस्से पढ़े। और उसके बाद फिर सूरत नमल, जिसमें चींटियों का तذکرہ था, इसको पढ़कर हमने अपने आप को बहुत बेबस समझा कि अल्लाह ताला छोटी छोटी मखलूकात से वो बड़े बड़े काम ले लेता है जो कि बाज़ दफा हम बड़ी बड़ी अक्ल रखने वाले लोग भी नहीं कर पाते। अल्लाह अपने दीन के काम चींटियों से भी करा लेता है और परिंदों से भी करा लेता है। तो जब हम अल्लाह के काम करने निकले तो आजजी वाले दिल के साथ हम्बल होते हुए करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। खास तौर पे इस पूरे पारे के अंदर से जो फीलिंग्स मैंने अपने लिए ली हैं वो शुक्र की हैं कि रब्बी औज़ेनी अनशकुर नेमतक अल्लती अनअमत अलैया, और माँ बाप के साथ इंसान अपने आप को रखे। और अब देखिए जो आखिरी लफ्ज़ है पारे के, अल्हम्दुलिल्लाहि वसलाम अला इबादिल्लज़ीन इस्तफा, तो इसके पढ़ते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जिस पैगाम के लिए अल्लाह ने अम्बिया को भेजा, आज हम किसी न किसी तरह उस पैगाम का हिस्सा बने हुए हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। अपना मुहासबा भी करके हमने चेक करना है कि जितनी भी चीजें हैं इनके ऊपर अब दिन ब दिन अमल आ रहा कि नहीं। खास तौर पर आप देखिए कि जब अम्बिया के किस्सों में हम ये चीज पढ़ते हैं कि अपने खानदान के आगे भी वो बोल पड़ते थे, हजरत इब्राहिम की मिसाल है, तो क्या मेरी मोहब्बत लोगों से अल्लाह के लिए है या फिर दूसरे नामों पे है? और अपने दिलों को पाक भी करना है। एक चीज आपने और भी इस बारे से सीखी है, जो सूरज और चांद की तरफ सजदा करती थी वो कौमें, तो आप देखिए कि मुशरिक कौमें जो होती है ना, वो अल्लाह की निशानियों को अल्लाह के कुर्ब के जरिए की बजाय उन्हीं को रब बना लेती हैं। तो एक छोटा सा काम करें जो मेरा ख्याल है आप पहले ही करते ही होंगे कि सूरज और चांद देखते हैं ना, सूरज की तरफ हम आंखें भर के तो नहीं देख सकते अल्लाह ये कि जब वो सुबह में आता है, लेकिन रात का चांद, तो आप चांद के घटने और बढ़ने को देखें और आप देखेंगे अब मुसलसल चांद घट रहा है घट रहा है, और फिर कुछ दिन के बाद चला जाएगा। तो इस पे गौर करें, किसी को अगर कोई फीलिंग्स आए तो वो लिख कर लाइए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमसे ये कोशिश कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हम अगला पारा शुरू करेंगे। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु, फाऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बी यस्सिर व ला तुय्यसिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से 20वें पारे का आगाज करेंगे, यानी आप कह लें कि अब हमारा आखिरी मरहला शुरू हो गया कुरान पाक पढ़ने का। पहले 10 वाले थे, फिर उसके बाद 11 से 19 था और अब आगे 20 से आगे। 20वां पारा जो है सूरत नमल की आयत नंबर 60 से शुरू करके और सूरत अल अनकबूत की आयत नंबर 44 तक पूरा होता है। पूरे पारे में तौहीद के दलाइल शऊर को बेदार करने के तौर पे पेश किए गए, किस तरीके से एक इंसान जब अल्लाह ताला के रास्ते में निकलता है तो अल्लाह ताला उसकी अकल को भी खोल देते हैं। बंदगी से मुतल्लिक आयात सूरत नमल की आयत 91 है, इन्नमा उमिरतु अन अअबुदा रब्ब हाज़िहिल बलदति अल्लज़ी हर्रमहा। इसका मैसेज हमारे लिए क्या है कि उस रब की इबादत करनी चाहिए जिसने इस दुनिया को पैदा किया और इस दुनिया में अमन दिया। इंशाल्लाह हम जब पहुंचेंगे वहां तो आप पढ़ेंगे कि एक कौम का जिक्र है। फिर उसके बाद सूरत कसस की आयत नंबर 63 है, जिसके अंदर हम सबको ये बात पता चलती है कि जिन लोगों को बिन देखे हम मानते रहे जिंदगी भर, उन सब को क्यामत के दिन देखकर हमें कितनी हसरत होगी। सूरत कसस आयत 82 में जो बात है ये कारून की है कि जिसको अल्लाह ने बहुत खजाने दिए थे और उसकी दौलत को देखकर कुछ दुनियादार लोगों ने ये ख्वाहिश कर ली थी कि जो उसको मिला वो हमें भी मिले, तो लेकिन जब उसको डूबता देखा तो दुआ करने लगे कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा ना हो। तो बंदगी का नुक्ता नोट कर लीजिए कि बंदा मोमिन दूसरों की दुनिया को देखकर झूठी तमन्नाओं में नहीं पड़ता कि जो उसको मिला है वो मुझे भी मिले, बल्कि उसके असल पहलू पर नजर रखता है। फिर सूरत अल-अनकबूत की आयत 16 में हजरत इब्राहिम का अपनी कौम को अल्लाह की इबादत करने और उससे डरने का हुक्म है। सूरत अल-अनकबूत की आयत 17 में अल्लाह ताला ने दोबारा इबादत और शुक्र को जोड़ दिया कि जितना इंसान की जिंदगी में अल्लाह का शुक्र होगा उतनी ज्यादा वो दिल के साथ अल्लाह ताला की बात को मानेगा। और आखिरी आयत सूरत अनकबूत की आयत नंबर 36 है कि जिसमें मदियन वालों का जिक्र करके अल्लाह ताला ने नबियों का पैगाम आम किया कि बंदगी है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हुए पारे को शुरू करते हैं और इसमें से इंशाअल्लाह ताला हम साथ साथ अमल की बातें लेंगे। इसमें खास तौर पे आपको दीन सीखने का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज दिखेगा और वो क्या है कि सिर्फ बात करते जाने की बजाय सवाल के अंदाज में बात की जाए ताकि उस बात को सुनने वाला सो ही ना जाए बल्कि बात करता रहे। शुरू करेंगे औसुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरत नमल आयत नंबर 60। अम्मन खलकस समावाति वल अर्द वानजल लकुम मिनस समाई माअन। भला वो कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। जब आपने करना क्या, काफी दो रुकू तक तकरीबन हर सवाल जो अब आपको आयत में मिलेगा उसके जवाब में खुद अपना जवाब लिखना है और अब कोर्ट जवाब एक ही है, अल्लाह अल्लाह। कौन है वो जिसने आसमानों जमीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके जरिए से वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में न था। उगा सकते थे हम ये दरख्त, एक बीज को दरख्त में बदलते देख कर क्या अल्लाह की कुदरत नहीं नजर आती। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरी जात भी है जो इन कामों में शरीक है कोई, जवाब दे नहीं, कोई भी नहीं है। तो बल हम कौम यादिलून, बल्कि यही लोग राह रास्त से हटकर चले जा रहे हैं। यानी फिर लोग क्यों लोगों को अल्लाह का शरीक कहते हैं। अम्मन जालल अर्द करारा, वो कौन है जिसने जमीन को जाए करार बनाया और इसके अंदर दरिया रवां किए और इसमें पहाड़ों की मेहें गाड़ दी और पानी के दो जखीरों के दरमियान पर्दे हायल कर दिए, यानी एक तरफ मीठा और एक तरफ नमकीन। अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और जात भी है जिन कामों में शरीक है। नहीं, बल्कि उनमें से अक्सर लोग नादान है। जब इंसान इस कायनात पे निगाह उठाता है ना तो हैरतनाक हद तक उसको यकीन होता है कि ये कायनात बहुत बड़ी है। सच है कि नहीं? मैं इन आयत को पढ़ रही हूँ और कभी इस तरह की बात सोचू तो जहन में जहाज में बैठकर नीचे देखना आ जाता। कई मील आपको सिर्फ पहाड़ दिखते हैं नीचे, फिर आप कई मेरा ख्याल घंटों के एतबार से जब आप ओवरसीज सफर करते हैं तो आपको नीचे पानी दिखता है, फिर बादलों के गुच्छे, कहीं समंदर, कहीं खुश्की, कहीं सब्जा। अल्लाह की हर चीज अनलिमिटेड है। क्या इन सबको सोचकर फिर इंसान अल्लाह के बारे में सोचता है? तो कहा जो इतना कुछ बना सकता है क्या वो तुम्हारे दुख नहीं दूर कर सकता। कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जबकि वो इसे पुकारे, और कौन है जो इसकी तकलीफ को रफा करता है, और कौन है जो तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और भी जात है जो ये काम कर रही है। कलील अम्मा तज़क्करून, कितने थोड़े लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। मुस्तर कौन होता है जिसकी तकलीफ कोई दूर ही ना कर सके। कभी जिंदगी का कोई ऐसा वक्त याद कीजिए आप बेचैन थे, बेकरार थे, दीन का या दुनिया का, माल का या औलाद का कोई गम सता रहा था। उम्मीद तो थी फलां काम करेगा फलां करेगा, लेकिन किसने उस वक्त भी आपकी मदद की? अल्लाह रहमान ने मदद की। इसीलिए अल्लाह के नबी कहा करते थे, अल्लाहुम्म ला मानिया लिमा आते वला मोतिया लिमा मनात वला यनफौजल जद्दी मिनकल जद। तो इस कायनात पे गौर करते वक्त ये देखें कि ये कायनात जो यकीन ना किए जाने के काबिल हद तक बड़ी है, ये खुद नहीं चल रही, अल्लाह के हुक्म से चलती। कोई ला है, गौर और फिक्र के बाद इंसान समझ जाता है कि अल्लाह की जात जो इतने काम कर रही है क्या वो मेरे दुख नहीं दूर कर सकती। करना क्या है, दुख में सिर्फ अल्लाह को पुकारें। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत वला मोतिया लिमा मनात وَلَا يَنْفَوْزَ الْجَدِّ مِنْ كَلْجَدْ. یہ نمازوں میں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے. رکوع سے اٹھنے کی دعاؤں میں یہ دعا آتی ہے, نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا اصل میں ایک بندہ مومن کے دل کی پکار ہے. فرمایا اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راہ دکھاتا ہے, اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے. دل میں کہہ رہے ہیں اللہ. اور یاد رکھیے کہ توحید کی دو قسمیں ہوتی ہیں, تین اور بھی ہیں لیکن دو بڑی جس کا تقابل ادھر سمجھ جائے. ایک ہے توحید ربوبیت, اللہ کا رب ہونا, کریٹر گاڈ جس کو بولتے ہیں. اور دوسری قسم ہوتی ہے توحید الوہیت, اللہ کا الہ ہونا, جس کو آپ معبود کہتے ہیں ورشپ. اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو کائنات میں ہر ایک نے مانا. آج کچھ ایتھیسٹ ہیں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ دنیا بنی, تو وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. سب سے زیادہ شرک جو ہوا نا وہ توحید الوہیت میں ہوا, الہ بنا لیا لوگوں نے, غیروں سے جا کے دعائیں مانگی, پکاریں کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ مکہ والوں, جب تم اللہ کو رب مانتے ہو تو پھر تم ان کو دعائیں سننے والا اور اولادیں دینے والا کیوں نہیں مانتے؟ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے, اور کون ہے اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. تو پھر یاد رکھو, تعالی اللہ عما یشرکون, بہت بالا برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب انسان کو سکھایا گیا, اب میں یبد الخلق ثم یعیدہ, اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا؟ کس کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے؟ ماں باپ سے؟ نہیں, اللہ سے. تو دوبارہ بھی قبروں سے وہی اٹھائے گا. اور کون تم کو آسمانوں زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ساتھ بھی ان کاموں میں اس کی حصے دار ہے؟ کہو, کیا کہو؟ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, کہ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو. یعنی کوئی ایک ٹکڑا دکھا دو زمین کا جو کسی بزرگ نے بنایا ہو, کسی قبر والے نے کسی کو واقعی بیٹا دیا تو لا کے دکھا دو. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, ان سے کو اللہ کے آسمان و زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اور نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. ان بیچاروں کو تو یہ نہیں پتا. دیکھیں, سویا شخص نہیں جانتا کہ ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو قبروں میں فوت ہوئے ہوئے لوگ کیسے جانیں گے؟ اللہ کہتے ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کتنی دور رہ گئی ہے, تمہاری کھوئی بھی بکری وہ تمہیں کیسے ڈھونڈ دیں. اور یاد رکھیے, شرک کی یہ قسم عموماً جاہل لوگوں میں ہوتی ہے, کم پڑھے لکھے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعویذ کرتے ہیں, کراتے ہیں, بزرگوں کے پاس جا کے فالے نکلواتے ہیں, ادھر ہو گئی, یہ ہو گئی. اللہ کہتے ہیں اصل وجہ بتا کے, اب یہاں بہت گہرا نقطہ ہے, کیوں لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بلے دار کا علم ہو فی الآخرہ, بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے, بلکہ یہ تو اس کی طرف سے شک میں ہیں, اور بلکہ یہ تو اس سے اندھے ہیں. تین باتیں شعور پہ تھوڑوں کی طرح برسائی جا رہی ہیں, کہ جب آخرت لوگوں کی آنکھوں سے دھندلی ہو جاتی ہے تو ان کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ جیسے بلب ہوتا ہے نا, یہ جیسے لالٹین کہہ لیجئے, لالٹین کے اندر چراغ کتنا ہی سٹرانگ کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کا باہر کا شیشہ ٹنٹڈ ہو, فوگی ہو, دھندلا ہو, اس پہ سٹرینز لگے ہوں, تو روشنی نہیں آئے گی نا. اسی طرح آخرت سے دوری اللہ کے مقام کو پانے نہیں دیتی. اللہ نے کہا اندھے ہیں, مانتے نہیں, تو آخرت کا علم نہ ہونا تو سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ آخرت کا شک ہے جو ہمیں اللہ کے راستے میں دینے سے روک رہا ہے, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں. اور یہ دنیا کا یقین ہے جو ہمیں سارا دن دوڑاتا ہے, کسی وقت ہماری چلتی چلتی گاڑی رک سکتی ہے زندگی کی. یہ گاڑی کی ٹک ٹک ہم سب کو ہماری موت سنا رہی ہے. اس کے باوجود دیکھیے, سامان 100 برس کے بیمار ہوتے ہیں, کام پہ پہنچ جاتے ہیں مرد. آپ انہیں کہ رک جائے, نہیں کام ہے, کہاں کہیں گے, کسٹمر ہے, جاب پہ جانا ہے, پیسے کٹ جائیں گے, جاتے ہیں کہ نہیں؟ یقین ہے. آخرت کے اجر والے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عذر کیوں مل جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یقین نہیں ہے. تو کریں کیا؟ اگر چاہتے ہیں کہ عقیدہ, ایمان, معاملات, نظام زندگی کا درست ہو جائے, تو آخرت کا عقیدہ درست کر دیں. اور وہ کیا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا, اور یہاں سے جانے کے بعد تم یہاں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے.